ஸோ வெல்கம் டு சுனு சினிமா கைஸ், இன் அசோசியேஷன் வித் ஆடியோ பெட்டார்.
ये मजदूर का हाथ है कादिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है।
तो आज का जो टाइटल है वो मैंने जो पॉडकास्ट शुरू किया बड़ा सिंपली शुरू किया, टाइटल भी बड़ा सिंपल है, वो बंदा भी बड़ा सिंपल था,
बहुत
इरफान साहब। और मतलब चलो यहीं से शुरू करते हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से इरफान?
यार जब तुमने ये सवाल पूछा तो मेरे जहन से एक ही वो एक वर्ड आया, मतलब एक इट्स अ वर्ड, एफर्टलेस एंड एलिगेंस, एफर्टलेस एक्टिंग एंड एलिगेंस। मतलब दैट एक्टर यूज टू पोर्ट्रे सो मेनी इमोशंस विद मिनिमल एफर्ट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एक्टर हमारे इंडियन सिनेमा है दैट कैन रीच टू दैट लेवल। पहले भी क्लासिकल एक्टर्स हैं बट इरफान खान एक अलग ही एक स्टैंडर्ड है, एक अलग ही पर्सोना है हमारे इंडियन सिनेमा में, जिन्होंने एक अलग से एक लेवल किया था। जैसे कि आई वॉज रिसेंटली लुकिंग फॉर दैट, लाइक एक इंटरव्यू थी जहाँ मैंने देखा था कि अक्षय कुमार उनके एक्टिंग के ऊपर बात कर रहे कि लाइक हाउ एफर्टलेसली ही एक्ट्स, और ही वॉज वो जोक बोल रहे थे कि यार यहाँ मैं एक्शन कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, अपनी इतने इमोशन से मिट कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, हाथ पकड़ रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, और यहाँ एक ऐसा एक्टर है जो कम शब्दों में, कम एक्सप्रेशन में इतना कुछ बताता है।
वो आता है, लाइन बोलता है, बस हो गया, ये कौन सी एक्टिंग है?
एंड दैट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्सोना, दिस एनिग्मा व्हिच वी कॉल इट एज इरफान खान।
हाँ, ये जो एक्टिंग का जो एफर्टलेस होना है ना, ये मेरे को थोड़ा सा लेट समझ में आया।
हाँ,
तो मेरे को कई लोग बोलते थे और बोलते थे अरे भाई क्या इरफान खान क्या एक्टिंग है वो ऐसे, और मैंने इरफान साहब का सिनेमा इतना देखा नहीं था।
हाँ,
एक दो चीजें देखी थी थोड़ी थोड़ी इधर उधर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था हमने बचपन से कंज्यूम करा था अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, तो हमको लगता था अरे भाई बंदा रो रहा है एकदम, और मतलब सॉरी फील कर रहा है और गुस्सा कर रहा है, दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, और एक्टिंग दिख रहा है कि यार ये एक्टिंग कर रहा है।
सही है, ऐसी होती है।
हाँ, ऐसा होता है। तो जब मैं इरफान खान को देखा, मुझे ऐसा लगा देख के ये एक्टिंग कहाँ कर रहा है, ये एक्टिंग कर कहाँ रहा है, तो ये तो अच्छा एक्टर है नहीं क्योंकि ये एक्टिंग कर ही नहीं रहा है। लेकिन जब मेरे को एक्टिंग पढ़ी, मैंने सीखी, थोड़ा काम किया, तब मुझे पता चला कि यार एक्टिंग होती हुई दिखनी नहीं चाहिए, कि यार ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, ही इज जस्ट बीइंग, एंड दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ इरफान साहब, कि भाई एक्टिंग दिख नहीं रही, आप कर रहे हो, और वो कैरेक्टर में ऐसी मर्ज हो गई है एक्टिंग कि भाई, तब मुझे समझ में आया कि व्हाई इरफान खान इज इरफान खान।
एंड यू नो 1987 में जब वो एनएसडी से ग्रेजुएट हुए थे, ऐसा नहीं कि लाइक उनको तुरंत काम मिला, लाइक ही वाज देयर अराउंड 20 इयर्स उन्हें लगा एक फिल्म में डेब्यूट करने के लिए। वो फिल्म है सलाम बॉम्बे 1987
में ही ग्रेजुएट के 20 साल के थे अराउंड, अगले साल ही उनको सलाम बॉम्बे मिल गई।
एग्जैक्टली
छोटा पार्ट था,
एंड देन 12 साल लगे।
हाँ, 10-12 साल उन्होंने
टेलीविजन में काम किया, जैसे कि चंद्रकांता हो, कोई है वो, और बहुत सारे है ना स्टार बेस्ट सेलर
का मेरे को याद है, बचपन में मैं देखता था।
हाँ,
और स्टार बेस्ट मेरे को इसलिए भी याद है, वो मेरे को बाद में पता चला डिटेल्स में, कि स्टार बेस्ट एक तरह की वो सीरीज थी जिसमें न्यू कमर्स डायरेक्टर्स को काम मिलता था। और बाद में मेरे को पता चला स्टार बेस्ट सेलर के कुछ एपिसोड, एक एपिसोड अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया,
एक एपिसोड
के मेनन है, ठीक है, एक एपिसोड इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है, जिसपे बाद में उसने आहिस्ता आहिस्ता नाम की फिल्म बनाई अपनी पहली, ठीक है, उसका वो पहले वो टेलीफिल्म या एक घंटे का एपिसोड वो बना चुका था, और उसमें फिर तिग्मांशु धूलिया भी था।
हाँ,
तिग्मांशु धूलिया की फिल्म थी एक, जो टेलीफिल्म थी एक घंटे की, 2-1.5 घंटे की।
हाँ,
उसका नाम था एक शाम की मुलाकात, जिसमें इरफान खान था,
ठीक
है। हाँ, और मेरे को मतलब वो कहानी याद थी, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा है कि इरफान खान की वाइफ थी टिस्का चोपड़ा, टिस्का चोपड़ा भी यंग थी उसको, मैं ऐसा सब दिख रही थी,
बहुत खूबसूरत और
बहुत सुंदर दिख रही थी। हाँ, तो इरफान खान और टिस्का चोपड़ा एक नए घर में मूव इन करते हैं, ठीक है, और वहां की जो लैंडलॉर्ड होता है वो पैर से थोड़ा सा लंगड़ा होता है, रघुवीर यादव है,
ट्रेमेंडस एक्टर।
हाँ, उनकी जो वाइफ है वो थोड़ी सी ऐसा पान चबाती है, साड़ी या ऐसा कुछ, लेकिन मतलब कहने का मतलब है इरफान खान को अट्रैक्टिव लगती है वो लेडी।
ओके,
मैरिड है दोनों, इरफान खान भी मैरिड है, वो भी मैरिड है। अब ही वांट्स टू मतलब अफेयर चलाना चाहता है वो उसके साथ।
ओके,
ठीक है। इरफान की भी वाइफ है और वो खुद किसी की वाइफ है, ठीक है। एंड वो बार बार कोशिश करता रहता है पूरे एपिसोड में कि कैसे मैं अपने एडवांसेस बढ़ाऊं, ये सब करूं। एपिसोड के एंड में इरफान खान को पता चलता है कि टिस्का चोपड़ा उसकी वाइफ उस पे चीट कर रही होती है।
ओ, ओ भाई,
मतलब कोई बंदा आता है कहीं और से, जो ये लैंडलेडी है जिसके मतलब चक्कर में इरफान खान पढ़ना चाहता है, वो आके बताती है कि आप ना अपने घर का पीछे वाला दरवाजा बंद करके रखिया करी, वहां से कोई आता जाता रहता है।
ओ, शिट।
और उसके बाद जो इरफान खान ऐसा रिएक्शन देता है ना कि अरे ये मेरे साथ नहीं, तो मैं तो वो जो मैं बोल रहा हूं, इरफान खान ने कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी बॉडी, उसकी आंखों, एक्सप्रेशन से सब समझ में आया कि यार ये बंदे को समझ नहीं आ रहा ये वो, मैं तो सोच रहा था मैं करूं लेकिन कोई मेरे, मतलब जो उसका टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन बोल लो या कुछ बोल लो, उसने सोचा कि अफेयर करूंगा लेकिन अफेयर किसी वाइफ का पहले ही चल रहा था। सो वो मेरे को हमेशा याद रहा।
और तिगमांशु डुलिया और इरफान खान का ना कुछ अलग एक एसोसिएशन रहा, मतलब वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहा कि वो एक क्रूशल मोमेंट में जब इरफान साहब छोड़ने वाले थे, तुम्हें याद है
हासिल
मूवी, और तभी दिग्विजय दुल्हन ने बोला कि भाई तुम बताओ।
हाँ, नहीं, वो 2001 में उन्होंने वॉरियर करी थी।
करेक्ट,
वॉरियर करी थी और 10-12 साल का मतलब उन्होंने टीवी कर चुके थे वो। उसके बाद एक कहीं फिल्म मिली थी वॉरियर, वो भी क्रिटिकली एक्लेम
चली नहीं,
उनसे उनको और काम इतना मिला नहीं। फिर 2000-2003 के अराउंड मतलब एक आध फिल्म आई, लेकिन वो इतना, रोग उनको 2005 में मिली थी लेकिन,
अच्छा,
जिसमें उनका लीड रोल था। उसके आसपास ना उनको थोड़ा ऐसा हो गया कि यार जा रहा हूँ मैं, यार तिग्मांशु मैं थक गया, टिशू बोलते हैं उसको, तिग्मांशु टिशू, यार जा रहा हूँ
मैंने सुना
थक गया, मतलब नहीं हो रहा,
नहीं हो रहा,
ठीक है, बहुत बोर हो गया हूँ मैं जा रहा हूँ, छोड़ो। बोले तो दिग्मांशु ने बोला कि नहीं तू रुक, तेरे को फिल्म फेयर दिलाते हैं, रुक जा, तेरे को एक अवार्ड दिलाते हैं, आ जा। तो वो आ जा उसने बोला और हासिल बनी, ठीक है। एंड ही गॉट द फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म, बेस्ट विलन अवार्ड,
नेगेटिव रोल के लिए
बेस्ट फिल्म फेयर
पहला अवार्ड हासिल कर दिया उन्होंने।
हासिल, वाह, मेटा हो गया
एकदम।
तो उनको अपना पहला अवार्ड उस चीज से हासिल हुआ। मैं मतलब जैसे हासिल में विलन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, उसी तरीके से मतलब उन्होंने अपने तरीके से किया। और एक इंटरव्यू में उनसे पूछा भी गया कि आप इसमें विलन बने कि मतलब इसमें अलग क्या है, तो इरफान खान बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलता है अलग ये है कि मैंने किया है। तो दैट कॉन्फिडेंस ही है, मतलब तुम बताओ, मतलब व्हाट हैव बीन योर फेवरेट परफॉर्मेंसेस ऑफ इरफान साहब?
यार ऐसे तो मतलब अभी बताना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि लाइफ ऑफ पाई हो, मकबूल हो, वो सब में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। बट एक जो एक मेरा एक स्टैंड आउट है, जो मैं बार बार जब मेरे ट्रेनिंग, खुद की ट्रेनिंग के लिए ना, मैं बार बार वो क्लिप देखता हूँ, वो है एक हैदर में, तुम्हें पता होगा, हैदर में सीन है, हाथ बंधे हुए हैं एंड देर इज लॉट ऑफ इमोशन, देर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज जेल में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, रोज का टॉर्चर हो रहा है। और शायद का जो फादर का रोल किया है, वो उनसे पूछते हैं भाई तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, क्या हो तुम, सुन्नी हो या शिया हो? तो बोलते, तो उनका जो डायलॉग और कैमरा पूरा उन पे जूम होता है और वो कहते हैं दरख्त भी मैं, दरिया भी मैं, झेलम भी मैं, चिनार भी, सिया भी मैं, सुन्नी भी मैं हूँ, पंडित मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। आई एम नॉट गिविंग जस्टिस बाई सेइंग दिस डायलॉग, ओनली ही कैन डू इट। और ये बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोगों ने उसकी इमिटेट भी किए हैं, ए लिस्टर सेलेब्स, और उन्होंने भी कहा है कि वी ट्राइड इमिटेटिंग बट नो वन कैन सरपास लाइक हाउ इरफान डज इट। छोटा सा सीन इम्पैक्ट करके जाता है, फिल्म पूरे शाहिद के ऊपर है, उसके स्ट्रगल उसके लिए, बट ये बंदा बीच में से आके पूरा फिल्म लेके जाता है।
ये जो बात है ना कि फिल्म लेके जाता है और इफेक्ट जो छोड़ता है लोगों पे, ये मेरे को एक बार सुना था मैंने कि नेम से आई थी मीरा नायर के साथ, वन ऑफ द लीड फिल्म, उस समय पे ही वॉज लाइक ऑलमोस्ट, ही वॉज 40 40। सेम साल उनकी एक और आई थी हिंदी में, लाइफ इन अ मेट्रो, लेकिन नेम से एक बहुत क्रिटिकली
एक्लेम।
और एक बात जो मेरे को उसकी बहुत सही लगी थी एक्टिंग में, नेम से देखने के बाद कई बंगाली लोगों ने बोला कि यार ये कौन सा बंगाली एक्टर है, मतलब इरफान साहब ने बंगाली इतनी बोली नहीं उसमें, अंग्रेजी ज्यादा बोली, हिंदी भी थोड़ी बोली, बंगाली बहुत कम बोली, लेकिन जो हिंदी में भी बंगाली का एक्सेंट
लाना,
कि वो अंग्रेजी भी ऐसे बोलना कि कोई बंगाली आदमी बोल रहा है। दैट्स मतलब इतना बारीक काम देखकर मतलब लोग बोले कि यार ये बंदा दिख तो वही रहा है जो लाइफ इन अ मेट्रो में था, लेकिन यार ये बंगाली है अब तो।
वो परफेक्शन वो लेके आना,
परफेक्शन। और फिर सेम बंदा आपको दिखता है लाइफ इन अ मेट्रो में वो अलग ही है
एकदम।
श्रुति क्या कर रहे हो? मैंने वहां देखा इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। नहीं, तुम्हारा वाला बंदा नहीं देखा।
अलग ही बूफट रोमांटिक अवतार।
हाँ, कि क्या हो गया? अरे वो आके एंड में बोलती है अरे आई लव यू। अरे अब लहंगे का क्या करेंगे?
मैंने तो उसकी साइज का बना लिया।
हाँ, लहंगे तो उसकी साइज का बना लिया। वो मेरे को ऐसा लगता है कि
दैट इनोसेंस ऑफ दैट कैरेक्टर।
हाँ, कि भाई ये बंदा ये कैसे कर रहा है? उसे बोलता है कि अरे पता है मेरा एक दोस्त है उसने कभी गाड़ी नहीं निकाली।
हाँ,
नहीं, उसने बोला जब सारे सिग्नल्स ग्रीन हो जाएंगे उस दिन मैं गाड़ी निकालू। बड़ा पागल दोस्त है वो, तो नहीं निकालेगा गाड़ी ऐसे तो।
लाइफ का फिलॉसफी और मेटाफर उसने इतने आसान
से धीरे से बोल देता है। एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो, टेक अ चांस बेबी, ऐसे बोल देता है, बेबी भी बोल देता है। एंड ही सेल्स इट वेरी वेल। ठीक है, और उसी में फिर आती है, कुछ सालों बाद आती है 2012 में, छह साल ग्यारह दस बारह की रिलीज, पान सिंह तोमर
जिनके लिए उनके लिए नेशनल अवार्ड भी
नेशनल अवार्ड मिला था उनको। तो उसकी भी कहानी ऐसी है कि मतलब इरफान न्यू कि इट इज हिज बेस्ट वर्क। ठीक है,
यस।
मतलब तुम सोच के देखो, जो तुमने जहां कहानी शुरू करी थी 1987 में, कोई 20 साल का लड़का निकलता है
एनएसजी से,
एंड तब जाके पान सिंह तोमर के बाद कहीं जाके एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ उसका बॉलीवुड पे। जहां लोग उसको बोलने लगे कि भाई ये बंदा है कुछ,
है कुछ।
और ये इरफान खान जैसे ग्रेट एक्टर को इतनी मेहनत लगी वो चीज रिलीज करने में, क्योंकि ही न्यू कि मतलब ये अच्छा काम है, ये रिलीज होना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ना मिले,
नहीं मिले,
क्योंकि लो बजट फिल्म और
इंडिपेंडेंट फिल्म थी, कमर्शियली वो जा नहीं पाई, डिस्ट्रीब्यूटर्स कम मिले।
डकैत की कहानी है, ये फलाना ढिमका, ये सब चीजें हैं। तो वो चीज़ हुई, और फिर उसके बाद इरफान साहब ने एक इंटरव्यू में बोला कि दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ सिनेमा, डिस्ट्रीब्यूशन।
दैट फेलियर टोल्ड हिम, और लाइक यू नो देयर सर्कमस्टेंसेस एंड दैट फेलियर ऑफ द इंस्पायर्ड डूइंग सच अ ब्रिलियंट एक्टिंग। पान सिंह तोमर टोल्ड हिम हाउ टू डू बिजनेस ऑफ सिनेमा।
हाँ, कि मतलब यार ही सेड ऑल्सो इन इंटरव्यू कि यार जब मैं एक फिल्म में एक साल डाल रहा हूँ, बहुत मतलब इतनी मेहनत डाल रहा हूँ, तो इट डिजर्व्स टू गेट रिलीज।
यस,
और उस रिलीज पे मेरा थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए।
बराबर।
तो वो कंट्रोल हासिल करने के लिए ही गॉट इनटू लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोले के आप प्रोडक्शन कंपनी खोले। किस चीज से ये हो सकता है कि मैं इतनी मेहनत करूं और वो बेकार ना जाए,
बेकार
वो डब्बे में बंद ना।
यस यस, एंड दैट्स वेयर यू नो ही डिड द बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग हिमसेल्फ इनटू द वेस्टर्न सिनेमा, मतलब द हॉलीवुड वाले। जब बिकॉज देन if you see Pan Singh Tomar ke baad you would have gradually seen how Irfan Khan is featured more in
Jurassic World
ho gaya, Life of Pi ho gaya, aur baki ke bhi films ho gaye. So he knew himself, he knew ki mera length, मेरा कितना मैं लेंथ में पुश कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ही अंडरस्टूड हिमसेल्फ एंड दैट्स वेरी ट्राइड ऑफ सेलिंग हिमसेल्फ एज एन एक्टर इन थ्रू हिज PR इन हॉलीवुड। उन्होंने एक एजेंट पकड़ा, उस एजेंट ने उनको वहाँ प्रमोट किया हॉलीवुड में, एंड देयर ही स्टार्टेड गेटिंग फिल्म्स, एंड दैट हेल्प्ड हिम इन मेकिंग द ब्रांड ऑफ इरफान साहब। सो ना, ये कहीं कहीं आई एम टॉकिंग लिटिल इन फिलोसफिकल वे
नहीं, वेरी टेक्निकल वे, यू आर वेरी राइट कि आज का भी जो एक्टर है वो ये उसको ये समझना पड़ेगा कि हाउ टू मार्केट हिमसेल्फ। वो भाई इरफान खान जैसे जीनियस एक्टर को अगर ऐसा करना पड़ रहा है या मतलब हॉलीवुड में देयर इज सेइंग कि भाई बिना एजेंट के आपको काम नहीं मिलता, तो भाई वो चीज आप उसने अंडरस्टैंड करी कि भाई एक रूल है यहाँ का, मेरे को एजेंट चाहिए होगा। वो ऐसा नहीं था कि अरे मैं तो इरफान खान हूँ, मुझे तो सीधा स्टीवन स्पीलबर्ग फोन करेगा। हालांकि क्रिस्टोफर नोलन ने किया था, बट एजेंट को किया था कि भाई मेरे को इरफान खान चाहिए, मना कर दिया। वो अलग है, चॉइसेस आर वेरी डिफरेंट, बट The following the rules of the times, कि यार आज ये हो रहा है, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं मान के चलूँ कि भाई मेरा तो मतलब मेरा क्राफ्ट या मेरा आर्ट इतना बड़ा है कि उसकी रिपल्स पहुँच जाएंगी कहीं। नहीं,
नहीं,
he did the normal way कि हाँ भाई एजेंट ले लो, पब्लिसिस्ट ले लो, चलो मेरे को काम दिला हॉलीवुड में,
और
दैट वर्क्ड वेरी वेल
एंड नो व्हाट काइंड ऑफ रोल यू कैन डू ब्यूटीफुली. ही न्यू हिमसेल्फ. मुझे पता है कि मेरे रिस्ट्रिक्शंस क्या, मुझे पता है कि मेरे अपॉर्चुनिटीज क्या, मुझे पता है मेरे एडवांटेजेस क्या, उसमें काम करो. और उसी प्रकार के उन्होंने रोल ली और वो छा गए. मतलब टॉम हैंक्स के साथ जब तुम एक्ट करो और टॉम हैंक्स बोल रहे हैं कि भाई ये कौन है जो जो मेरे साथ स्क्रीन में है बट मैं डगमगा रहा हूँ, बट ये बंदा तो स्थिर रहता है और इतना अच्छा बोल देता है. सो व्हेन व्हेन वेस्टर्न एक्टर्स आर टॉकिंग अबाउट यू, मतलब यू आर समथिंग.
हाँ, यू आर समथिंग. उनका सिनेमा 100 साल आगे है, तो इरफान साहब मान लो भाई 100 साल आगे थे.
और फिर देखो ना, मतलब
एक्टर हैज टू नो हिमसेल्फ.
या
मतलब यही इरफान साहब का मेरे को बात होलसम बात ये लगती है कि लाइक ही इज नॉट ओनली एन एक्टर. एक्टर तो है ही, उनकी एक्टिंग फिल्में हम देख देख कर सीखते जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं हमको कहीं ना कहीं कि बेटा मार्केटिंग पे भी ध्यान दे,
ध्यान
दे, थोड़ा सा बिजनेस के हिसाब से भी सोच.
एंड
लाइक इतना इतना होलसम होते हुए भी ऑडियंस के साथ उनका ऐसा कनेक्ट होना कि भाई जब वो गए एकदम अचानक कोविड के बीच
में आ रहा था यार कि बंदे ने 60 फिल्म्स थी और अच्छा से चल रहा था लॉकडाउन, और हम सब सोच रहे और सडनली जून या मई के महीने में 20th अप्रैल के महीने में वो जो शॉकिंग न्यूज़ आती है कि इरफान साहब नहीं रहे, इट इज़ एक लॉस ऑफ इंडियन सिनेमा और इंडियन हिस्ट्री तो ही, बट एक आर्टिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का था. उसी साल बहुत सारे एक्टर्स हमसे बिछड़ गए, बट इरफान खान का लॉस मतलब बड़ा लॉस था फॉर एन एक्टर, फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, फॉर हिम, लाइक फॉर अस हु वी थिंक हिम एज एन इंस्टीट्यूशन. उनका जाना, सडनली जाना, बोलोने
इट फेल्ट वेरी पर्सनल,
वेरी पर्सनल. इट वॉज सच अ लॉस. मतलब आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई एक्टर्स क्राइंग जिन्होंने कभी यार इरफान खान से मिले भी नहीं होंगे, बट उन्हें देख के, उनको समझ के जब हम बड़े हो रहे हैं और सडनली ही इज नॉट देयर, ऐसा लग रहा था कि यार एक गाइडिंग स्टार कहीं दूर चला गया यार. एंड दैट्स वेयर आई फेल्ट लाइक ये पॉडकास्ट में इरफान खान के लिए बोलना, उनके बारे में बात करना, उनके लिए एक ट्रिब्यूट देना बनता है. सो
ट्रिब्यूट हो गया, एपिसोड पूरा उन्हीं पे
पूरा उन्हीं पे बिकॉज मुझे कहीं कहीं लग रहा है सिनेमा में अगर हम दिलीप साहब, शाहरुख खान साहब, अमिताभ जी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, देन वी
कांट, इरफान हैज हिज ओन प्लेस.
यस,
ही हैज मेड दैट प्लेस. ही हैज लाइक बीच में से कोई लड़का आता है जयपुर से, टोंक में जो बहुत छोटा गाँव है, वहां से कोई आके सिनेमा में. अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं कि पीकू में जब वो एक्ट कर रहा था तो मैं देखता रह जाता था, चल क्या रहा है भाई. मतलब उससे इतना अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो वेरी हम्बल कि भाई मैं तो हूँ ही महानायक, लेकिन भाई मेरे को भी सीखने को मिला काफी.
तो वही मतलब उसका मतलब एग्जैक्टली इन पीकू वो जो इम्प्रोम्प्टो सीन चल रहा है जब गाड़ी बीच में रुक रही है, उसमें दीपिका, अमिताभ बच्चन जब इम्प्रोम्प्टो में बात कर, इरफान खान इज टेकिंग अ लीड. तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक दैट एक्टर वॉज ओवरऑल नॉट ए ह्यूमन बट एन इंस्टीट्यूशन फॉर एक्टर्स करंटली. फ्यूचर में भी जो भी एक्टर्स हैंगे उनके लिए इरफान खान से सीखने के लिए बहुत कुछ
है. ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं इरफान साहब के कि हमारा एक दूसरा एपिसोड निकल सकता है सिर्फ पूरा सिर्फ उनके सीन्स को लेकर कि भाई मकबूल में ये देखा था उन्होंने, ये करा था, पीकू के इसमें ये सुना है, इसमें ये हुआ था, इसमें इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा. तो वो तो बहुत लंबा है,
बहुत
दूसरा एपिसोड है. सो फिलहाल इसको एज अ ट्रिब्यूट टू इरफान खान, लेट्स कंक्लूड दिस एंड सो दैट्स इट गाइस. दिस इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुनो सिनेमा
इमोशनल
एसोसिएशन विद ऑडियो पिटारा.
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है.